तो हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय राजयोगिनी शशि बहन जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दीदी ने जो मम्मा बाबा दादियों और दादाओं से पालना ली है, उस पालना की आप सभी को भी भावना दिलाएंगे और साथ साथ बाबा के घर से स्वागत टोली देकर आपका मुख भी मीठा कराएंगे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन, हम सबके बहुत बहुत प्यारा घर और हम सबके दिलों में समाया हुआ हर सेकंड, हर पल मधुबन, मधुबन के बाबा, मधुबन की दादियाँ सदा दिल में याद रहती हैं। चाहे हम कहीं पर भी रहें, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? मधुबन में रहती है। तो आप सबका अपने ही घर, अपने ही द्वारा, अपने ही बाप के द्वारा और अपनी दादियों के द्वारा, अपने ही सेवा साथी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से मधुबन में बट्टी के लिए बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। तो उल्लास नगर, जिसकी बहुत विशेषताएं हैं, उल्लास नगर नाम ही ऐसा है कि सदा उमंग और उत्साह में रहने वाले, और उल्लास नगर की सेवाओं की जो जिम्मेवारी प्यारे बाबा ने हमारी सोम दीदी, साथ में पुष्पा दीदी और सभी टीचर्स बहनों को विशेष जो दी हैं, जिसमें सोम दीदी की तो जितनी महिमा करें उतना कम है। ताली बजाओ दीदी के लिए। प्यारे साकार बाबा और मम्मा और दादियों की पालना ली हुई इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर सदा हान जी का पाठ पक्का किया हुआ, त्याग तपस्या की मूर्ति, और इस त्याग और तपस्या ने उल्लास नगर की धरनी को इतना हरा भरा किया, इतना हरा भरा किया, वो तो हम भी देखते हैं और आप सभी भी देखते हो। उल्लास नगर की और भी बहुत विशेषताएं हैं जो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी धरनी जहाँ पर साकार बाबा, दादियाँ, मम्मा, सभी वरिष्ठ भाई और सब दादियों ने कदम रखा है। दादी जानकी जी के बारे में हम जानते हैं, कैसे वो पैदल चली जाती थी ट्रेन में, बस में खर्चा भी नहीं करती थी, पैदल हाथ में थैला उठाया और चल पड़ती थी सेवा करने के लिए। ऐसे हमारी सोम दीदी ने भी किया है। खर्चा क्यों करें, बाबा का है पाई पाई की संभाल करते हुए, तो ऐसा बड़ा स्थान बनाया तो सबको बहुत प्यार से पालना देती है। वैसे भी उल्लास नगर एक इंटरनेशनल स्थान कहलाता है, जहाँ पर बहुत से सिंधी भाई बहने रहते हैं और कॉमन भाषा में उसको क्या कह देते हैं, यूनियन ऑफ सिंधी एसोसिएशन, यूएसए। कभी कभी किसी ने कहा कि ये सब क्या है, यूएसए यहाँ पर कैसे आ गया, बोला यूएसए क्या, यूनियन ऑफ सिंधी एसोसिएशन, क्योंकि बहुत सारे सिंधी तो विदेशों में बसे हुए हैं और उन्होंने अपने अपने स्थान यहाँ बना लिए, तो एक यूनियन बना दिया, तो उल्लास नगर को क्या बना दिया, अमेरिका बना दिया, है? अमेरिका बना दिया। तालियां तो बजाते जो अपने लिए, आप सबके लिए अमेरिका बना दिया, लेकिन अमेरिका की जो बाहरी पॉलिसी है वो अलग है और ब्राह्मणों की पॉलिसी अलग है। और उल्लासनगर में तो क्या कहें, इतने क्रिएटिव काम किए, इतने क्रिएटिव काम किए हैं जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। लिविंग मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल यहाँ माउंट आबू में भी कई बार दिखाए हैं। कईयों को पता होगा, कई यहाँ पर सेवा में आए हमारे ये बैठे हैं, परमानंद भाई और दूसरा कहाँ है श्याम भाई, ये तो गायक बैठे हुए हैं, गीत गा गा करके आपको बहलाते रहते हैं, सब करते रहते हैं, नचाते रहते हैं और कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स बना करके पीस पार्क के अंदर बनाया और यहाँ पर भी बनाया था, पोलो ग्राउंड में भी बहुत अच्छा बनाया था। और सबसे बड़ा मॉडल कौन सा अच्छा लगा? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्यों लगा? क्योंकि माँ बच्चे क्या करते, माँ को कहते देखो देखो, माँ बच्चे को कहती देखो देखो कुंभकर्ण मत बनना है, तो बाबा कहते माँ बच्चों को कहती देखो तुम पढ़ता नहीं है ना, अभी कुंभकर्ण मत बनना। बच्चा भी जाके देखता है और मॉडल देखता है तो वो भी अपनी माँ को शिक्षा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सेवा भी हुई हरिद्वार की तरफ। भारत के किन स्थानों का नाम हम गिनती करें, बहुत सेवा हुई है। तो इस सेवा के लिए, नई इन्वेंशन के लिए, नए पुरुषार्थ के लिए बाबा भी वतन से आप सबको देखते रहते हैं और आप सबके अंदर उमंग उत्साह भरते ही रहते हैं। तो ड्रामा अनुसार आज हम सुबह बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने कहा मैं आता हूँ अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए, याद है? बोलो बोलो, हैं क्या बनाने के लिए? सौभाग्यशाली हैं। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि आप सब कितने ना सौभाग्यशाली बच्चे हैं। ड्रामा अनुसार उल्लासनगर की धरनी को बाबा ने पहले ही भाग्य का बीज डाल दिया, तो आप सबका जन्म हुआ है भाग्य से, है ना? जैसे कोई अमीर घर में जन्म ले या कोई ऐसे मल्टी मिलियनेयर है उसके घर में जन्म ले तो कहते पूर्व जन्म के अंदर इसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि जो अभी इस घर में जन्म लिया है। तो आप सभी ब्राह्मण बनना ही भाग्य के द्वारा, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, प्यारे बाबा ने किया, हमारी दीदियों ने किया, चुन चुन के पता नहीं कहाँ से आप सबको इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर फुलवाड़ी बना दी। तो भाग्य किसको मिला? मिला आपको, मेहनत किया हमारी सोम दीदी और ये सब दीदियों ने, सारी इनकी मेहनत का ही फल कौन खा रहा है? आप खा रहे हैं। और फिर दूसरा बाबा कहते हैं ये मेरे सौभाग्यशाली बच्चे हैं। सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिसके लिए बच्चा जैसे बड़ा होता है बाप उसको पढ़ने के लिए भेजता है या बिजनेस करने के लिए भेजता है, जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है मल्टीप्लाई करता है। जैसे आपके सामने तो बॉम्बे के कई एग्जाम्पल हैं, मल्टी मिलियनर हैं, छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया, आज तो पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है। तो ऐसे बाबा कहते ये सारे बच्चे मेरे इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं, ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से दूसरों का भाग्य बनाते हैं। बाबा ने कहा कि खुद भी भाग्यशाली बनना है, सौभाग्यशाली बनना है और दूसरों को भी वैसा ही बनाना है। तो बाबा ने कहा सौभाग्यशाली वही हैं जो सत्युग में सूर्यवंशी राजधानी में आते हैं। फिर बाबा ने कहा ये स्कूल कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, याद है? देखो ये यूनिवर्सिटी है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, ईश्वरीय कॉलेज, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। द्वापर या कलयुग में देखो, प्रिंस प्रिंसेस के लिए कॉलेज अलग होते हैं। वहां कहेंगे या प्रिंस प्रिंसेस पढ़ेंगे, आज के तो प्रिंस प्रिंसेस है ही नहीं, तो वो प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ते। जब बाबा कहते कोई भी हो, साधारण हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, कैसा भी हो, शरीर साथ देता है या नहीं देता है, लेकिन ये कॉलेज हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। तो प्रिंस और प्रिंसेस कितने रॉयल होते हैं, उनके अंदर कितनी रॉयलिटी होती है। तो साकार में बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से रॉयल्टी के संस्कार सिखाए। पहली बात बाबा कहते थे कि बच्चों को कभी, पहली रॉयल्टी ये है, कभी भी मन में उदास नहीं होना। दूसरी रॉयल्टी बाबा ने कहा, ना मन को दुखी करना है, ना किसको दुख देना है। तीसरी रॉयल्टी बाबा ने कही कि कभी भी किसी का दुख नहीं लेना, देते भी नहीं है। कहते ना, क्या करें, आ गया था, ऐसा हो गया था। तो बाबा कहते ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा नहीं है। ब्राह्मण मीन्स सदा संतुष्ट, ब्राह्मण मीन्स सदा खुश, ब्राह्मण मीन्स सदा ही औरों को विशेषताएं देने वाले। तो साकार में बाबा ने जो हम सब की पालना की, हम सब दीदियों की, हम सब दादियों की जो पालना ली है, उनके जीवन में हमने क्या देखा, कभी भी वो अपने मन को दुखी नहीं करते। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परीक्षा आए, एक बल एक भरोसा, एक अटल निश्चय के बल पर वो चलते रहे। तो बाबा हमेशा हर बात को रॉयल्टी से सिखाते थे। तो एक बार बाबा क्या करते थे, एक बार बाबा जहाँ जाते थे ना, तो बच्चे भी वहाँ साथ में जाते थे। तो बाबा ने क्या किया, बाबा आंगन में घूम रहे हैं तो बच्चे को बाबा कहते, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, सारे बच्चे आ गए। अब सब कहते हम बाबा का हाथ पकड़ें, तो कितने बच्चे हाथ पकड़ सकेंगे बाबा का, दो ही तो पकड़ सकेंगे ना। बाबा इतना प्यार करते, बाबा के तेरे कल्प के बाद मिले हो, सारे कल्प में नहीं मिलोगे, यही एक समय है। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बाबा ने ऐसे हाथ किया, पांच बच्चों ने पांच उंगली पकड़ ली। फिर बाबा ने इधर हाथ किया, पांच बच्चों ने पांच उंगली पकड़ ली, आठ दस ने बाजू पे हाथ रख लिया, आठ दस ने इधर रख लिया, और आठ दस ने कंधे पे हाथ रख लिया। बाबा ने कहा, देखो मैं कितना बछड़े वालू नहीं, बाबा मुरली के अंदर कहते ना, आज भी बाबा ने कहा। तो बाबा ये नहीं कहते थे ये सब क्यों कर रहे हैं, तो बाबा कहते थे, देखना विराट रूप देखना हो तो यहाँ देखो। जैसे कभी कोई केक काटते ना, दीदी का कोई प्रोग्राम होगा, सेलिब्रेशन हो रहा है, केक काटने के लिए तो चार ही लोग आगे खड़े होंगे, बाकी सब क्या करते, पीछे एक के ऊपर कंधे पे हाथ रखते जाते, सोचते हमने भी केक काट लिया, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते थे, मेरे को बाबा हमेशा बच्चों को देख करके इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। बाबा कभी भी बच्चों से थकते नहीं थे, बाबा एक एक बच्चे के पास जाते थे, उनकी संभाल करते थे, उनको पूछते थे, क्योंकि बाबा के टाइम पर तो ये पांडव भवन में कोई भी खटिया नहीं होती थी, सब पट पे सोते थे। तो बाबा इतना रॉयल्टी से कहते थे, देखो ये कौन है, मेरे पट राजा और पट रानी आ गए, तो अभी क्या कहेंगे, अभी क्या कहेंगे, हैं? बाबा तो कहते थे मेरे पट राजा और पट रानिया, अभी ऐसा नहीं कहना खट राजा, अभी कहना है हम बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, है ना, हम सब बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जितने भी आ जाएं वो सब के सब समा जाते हैं। बाबा के घर में देखो ये पांडव भवन जो है कितना साधारण है, आप तो बड़ा रॉयल्टी से रहते हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छे अच्छे कमरे हैं, क्या नहीं है, अच्छा सा हॉल है, यहाँ आकर के अच्छा लगा आपको, इतना साधारण है, वहाँ तो हॉल भी बड़ा डेकोरेटेड होगा, एसी चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ तो वो साधन नहीं है। यहाँ कैसे लगेगी भट्ठी, वहाँ तो आप बहुत भट्ठियाँ करते हैं, बॉम्बे की सारी सीनियर बहनें आकर के आपको भट्ठी कराते हैं, यहाँ भट्ठी में आपको क्या मजा आएगा? आएगा आएगा? अच्छा, सब पक्के निश्चय बुद्धि है ना, क्योंकि बाबा के घर में जो प्यार मिलता है, बाबा ने कण कण के अंदर जो तपस्या के वाइब्रेशन भरे हैं, वो तपस्या के वाइब्रेशन हमें पहले ही शक्ति दे देते हैं। अभी मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, क्योंकि हम तो यहाँ पर वर्षों से हैं और कई तरह के लोग आते, लंबी कहानियाँ सुनाते रहो तो बंद नहीं होंगी, लेकिन एक ही सुनाऊंगी। तो एक बार क्या हुआ कि एक भाई किसी बहन से मिलने के लिए आया, वो आंगन में जो बाहर थल्ला है ना, वो थल्ला उसमें कच्चा था, वहां पर बैठा हुआ था। और उसको मैंने कहा आप क्यों आए, कहा किसी बहन से मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा आप अंदर बैठ जाओ, बोला मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा। मैंने कहा यहाँ नहीं, कहता नहीं, यहाँ जो शक्ति मिल रही है, मैं बहन से भी जल्दी नहीं मिलूंगा, यहाँ जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति तो कहीं नहीं मिलती, यहाँ जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसमें खोया हुआ है, उसी में मस्ती में बैठा है। अब बताओ, उसको ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमारी क्या है वो भी पता नहीं, बाबा के भी पता नहीं, योग भी पता नहीं, लेकिन वो पहले से अनुभव कर रहा। कई ऐसे ऐसे आते हैं, शांति स्तंभ के पास खड़े होते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या अनुभव हो जाते हैं, कहते यहाँ तो इतनी शक्ति मिली। अब आपको भट्ठी के अंदर शांति स्तंभ पर जाने का, बाबा के कमरे में जाने का, हिस्ट्री हॉल में बैठने का मौका मिलेगा। इस मौके पे एक बात का ध्यान रखना है, ना तो हिस्ट्री हॉल में अपना मोबाइल ऑन रखना है, ना तो शांति स्तंभ पर। मस्त होते हैं ना, क्या करते, मुरली सुनते टाइम अपने मोबाइल की मुरली ऑन कर लेते, अरे भाई बाबा मुरली सुना रहे वो सुनो ना। शांति स्तंभ पर जाएंगे तो मोबाइल को ऑन कर लेते और मुरली पढ़ने लग जाते, वहाँ शक्ति, बाबा के साथ का अनुभव, बाबा का प्यार, बाबा की जो अचल स्थिति थी उसका अनुभव करना है। तो उस अनुभव के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और बाबा तो बच्चों को वो अनुभव कराते हैं। जब साकार में बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे, तो बाबा मुरली चलाते चलाते कभी कभी खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के सारे हॉल के अंदर चक्कर लगाते थे, और बाबा दृष्टि दे रहे हैं तो दृष्टि देते सारे के सारे उसमें जैसे सूक्ष्म वतन में उड़ जाते, फरिश्ते बन जाते थे। अभी इस भट्ठी में आपके पास अगर बाबा आ जाए तो क्या करोगे, हैं? इधर देखोगे, उधर देखोगे, पीछे देखोगे, या किसको देखोगे? बाबा को देखोगे। अच्छा, जिन्होंने बाबा को देखा वो हाथ खड़े करें। सबने देखा है, देखा है ना, सूक्ष्म। अरे देखा क्या, बाबा हमारे साथ है, सुदेख सु। बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों का हाथ पकड़ करके चलता हूँ, बच्चों को चलाता हूँ। बाबा को शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं कब तुम्हारे बच्चे तैयार होंगे, बाबा ब्रह्मा बाबा आपकी बहुत फेवर करते हैं, कहते हो जाएंगे ना, हो रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ हैं, और कभी कभी कई माताएं बीमार होती है ना, बाबा को कहती बाबा हम कब चलेंगे, बाबा कहते क्या चाहती है, तो मैं चला जाऊं क्या? अरे जितना टाइम है लाभ लो, शरीर अपना काम करे, कैसे भी करता रहे, इसी शरीर के द्वारा ही तो सारे वरदान लेने हैं। और बाबा ने ये भी कह दिया मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं। तो बाबा साथ है, हाथ पकड़ के चल रहा है, बाबा हमारी बैकबोन है, बाबा हम की छत्र छाया में है। आज से कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने बाबा को नहीं देखा है, ये कभी नहीं कहना। कभी कभी कह देते हैं ना योग नहीं लगता, कभी होता है ना ऐसे बोलते हैं ना, योग नहीं लगता। आज भी बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता है। अब जो समझते हैं योग नहीं लगता, उसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी कई बार सुनाइए, कईयों को सुनाइए, आप क्वेश्चन ना भी सुनाई हो। 1983 से अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री ओम शांति भवन में आते थे। उस समय अव्यक्त बाप दादा के मिलने की विधि चेंज थी, ग्रुप ग्रुप आकर के मिलते थे। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे बढ़ते जाएंगे, मिलने की विधि चेंज होगी। तो ग्रुप ग्रुप आते थे, एक विदेश का ग्रुप था, उसमें एक विदेशी भाई था और वो कहता था मेरा योग नहीं लगता है। मैं बाबा से आज प्रश्न पूछूंगा कि मेरा योग नहीं लगता है। तो जैसे बाबा के पास बैठे ना, तो बाबा ने उसको वरदान दिया, कहा कि सदा का सहज योगी। तो सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा बाबा ये तो कहता मैं प्रश्न पूछूंगा मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा क्या कर रहा है ये बच्चा? यही तो कहता बाबा मैं भूल जाता हूँ, बाबा मैं मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं आपको कैसे याद करूं, बाबा मैं आज बहुत पावरफुल योग करूंगा। तो क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा याद तो वो कर रहा है, आप भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे, वो कर रहा है ना। तो सबसे ज्यादा योग तो उसने लगाया, लेकिन क्या करता है, याद ज्यादा कर रहा है, जो बीच का लिंक है स्नेह का, वो लिंक उसका ढीला है, वो लिंक को उसने ढीला करके रखा है। याद का मतलब कुछ नहीं, याद का अर्थ है बाप का प्यार। प्यार है तो खो जाओ, सोचने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। बाबा ने कहा वो लिंक को इसने ढीला किया हुआ है। तो अभी हम लोग भी क्या करते हैं, सारा दिन याद करने बैठते हैं, योग नहीं लगता है। फिर दूसरी नई, आजकल पता नहीं कौन सी नई एक पद्धति बना के रखी है, मोबाइल में एक फीड कर देते हैं ऐप, कितना मिनट याद किया, कितने मिनट किया, सारा दिन गिनती करते रहते। बाबा ने कभी कहा है मैं बच्चों की गिनती करता हूँ? ये गिनती करते हैं बाबा को याद करने की, कितनी अजीब सी बात है। साइंस एक तरफ सुख देती है, दूसरी तरफ गिनती करते हैं। सुबह 15 मिनट योग किया, फिर आधा घंटा योग किया, फिर मैंने 15 मिनट योग किया, फिर आधा घंटा मैं खाली था, योग में बैठा, आज का मेरा चार्ट जो 3 घंटे का हो गया। तो बाबा जिसको पास बाबा के पास कभी कभी चार्ट भेजते थे ना, बाबा कहते चार्ट जो है ना ये झूठा चार्ट है, इसको इधर रख दो। अगर जिसने गिनती का योग लगाया तो आप समझ जाओ वो योग, वो प्यार बाबा के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है। प्यार, योग मीन्स प्यार, योग मीन्स बाबा की अनुभूति, योग मीन्स हो कि बाबा के साथ के जो अनुभव है सदा ये रहे कि बाबा ही करा रहा है, हम तो केवल निमित्त है, वो सब हमको देखना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात बताऊं, यहाँ जिस हॉल में आप योग कर रहे हैं, इस हॉल की बड़ी विशेषता ये है कि ये बाबा की पहाड़ी है। ये हॉल नहीं था बाबा, इनको पता है बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थी और मम्मा की यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी। और 24 जून को बाबा ने एक दिन पहले, मम्मा के अव्यक्त होने से पहले, बाबा ने मम्मा के हाथ से सबको अंगूर दिया था, टोली खिलाई थी, बड़ा बड़ा अंगूर, उसके अंदर 2 बीज होते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब भी मम्मा अव्यक्त हुई उसके बाद हर साल बाबा जो अंगूर आते थे तो 4-5 ग्रुप बना करके बाबा सभी स्थानों पर प्यारी मातेश्वरी के याद के निमित्त सभी स्थानों पर भेजते थे। एक ग्रुप यहाँ से राजस्थान से होता दिल्ली, एक ग्रुप पंजाब, एक बॉम्बे जाएगा, एक महाराष्ट्र जाएगा, एक उधर कर्नाटक साइड जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जब अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए तो पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आते, फिर एक बार बहुत से बच्चे आ गए तो बाबा जो है पांडव भवन के आंगन में आए थे। अब आंगन में तो बाबा का सदा नहीं हो सकता है ना, तो फिर प्लान किया गया कि कब कहाँ बनाया जाए। उस समय ओम शांति भवन की जमीन भी नहीं ली थी, तो 1975 में इस पहाड़ी को थोड़ा समतल करके ये हॉल बनाया गया है। 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ इस हॉल में आते थे और इस पहाड़ी पर बाबा जो है बैठ करके आपने बाबा के एक फोटो देखा होगा ना, ऐसे तपस्या कर रहे हैं, वो इस पहाड़ी का है। आज भी बाबा ने कहा ना कि बाबा क्या करते हैं, कम्युनियन करते हैं, बाबा कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाहर की कॉन्फ्रेंस में क्या है, तो बाबा यहाँ बैठ जाते थे, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ के आ जाते थे बाबा के पास। बाबा कहते बैठो बैठो सेमिनार करो, सेमिनार मीन्स बाबा की याद को कैसे पावरफुल बनाना है। फिर उसके बाद 75 से अव्यक्त बाबा यहाँ आते थे, तो अव्यक्त बाबा यहाँ बैठते थे और हम सब बच्चे कहाँ बैठते थे, हम खुश नसीब यहाँ बैठे हुए बाबा के पास, और आप तो दूर हो थोड़ा, ठीक है आप तो दूर हो, हम तो यहाँ बैठते थे ना, बाबा यहाँ कोई कुर्सी तो होती नहीं थी, यहाँ बाबा है और हम सब यहाँ बैठे, तो अभी लग गई है स्टेज बन गई है, उस समय स्टेज भी नहीं थे, बाबा यहाँ इधर कॉर्नर में और हम सब के सब इधर ही बैठे हुए हैं, जैसे बच्चे बाप के पास बैठे, माँ बाप के पास बैठे हैं, गोदी में खेल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते रहे। मन तो नहीं कुछ हुआ, मन भर गया, बाबा सामने आया, आ गया ना, समझो बाबा सामने हैं। फिर ये स्थान जो है अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हॉल है, और ये साकार बाबा और दादियों की तपस्वी पहाड़ी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आप सबका बाबा के घर में फिर से बहुत स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ एक बात और बतानी है, वो बहुत जरूरी है। बाबा कहते मन का भी ध्यान रखना है, तन का भी ध्यान रखना है, तो बाबा के घर में जब बच्चे आते हैं तो मधुबन निवासी बाबा तो बहुत खातरी करते थे, मधुबन निवासी भाई बहने भी ध्यान रखते हैं कि कोई कमी ना रहे, लेकिन जब हम योग में चढ़ जाते ना, हमको भूल जाते हैं कि शरीर के लिए दवा भी खानी है या नहीं खानी, वो दवा रह जाती है कमरे में, फिर किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, दवा रहेगी कमरे में, कमरा है बहुत दूर, कौन लेने जाए, चलो बाबा की याद में खा लो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शरीर तो पुराना है ना, शरीर तो अपना काम करता है, इसलिए बाबा कहते शरीर का ध्यान रखेंगे तो आत्मा भी शरीर के द्वारा लाभ लेगी। इस ग्रुप के अंदर हम देखेंगे सभी ने अपने शरीर का ध्यान रखा कि नहीं रखा, क्योंकि बारिश का टाइम भी है, वो भी ध्यान रखना है, ठंडी भी लग सकती है, थोड़ा सा गर्म कपड़ा डाल के रखना है, कुछ भी हो पूरा ध्यान रखना, बाबा देखेंगे। बाबा के एक बार बाबा की बात सुनाए, बाबा कैसे प्यार से समझाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा चलते हुए उसका पांव फिसला गिर गया, और बाबा ने कहा देखो तुमने बाबा को याद योग में नहीं था इसलिए गिरा। अब वास्तव में ये बात नहीं, बाबा ने क्यों कहा कि माइंड का बैलेंस रखना, इसी तरह से आत्मा और शरीर का बैलेंस रखना है। अगर दवा नहीं है तो डिस्पेंसरी से लो, भूल गए हैं कमरे में ले जाना देरी होती है तो यहाँ से लेकर के खाओ, लेकिन ये भी इस संगम युग के अंदर शरीर को चलाने की एक विधि है, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, बाबा बच्चे आते थे तो बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे, तो बाबा कहते आओ मेरे बच्चे, कौन से बच्चे हो आप, हैं लाडले बच्चे हो, सिकी लदे बच्चे हो, नूरे रतन हो, कौन से बच्चे हो बोलो, हैं इनको बोलने दो ना ये कौन है बोलो, हम टोलपुट हैं, टोलपुट समझते हैं, आप तो सिंधी है ना, क्या समझाऊं, टोली को कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में इधर कहेंगे चीजी खा लो, है ना, मिठाई खा लो, सिंधी में क्या कहते हैं, टोली मीन्स स्वीट, तो बाबा कहते आओ मेरे स्वीट टोलपुट, बाबा हमेशा कहते थे ये मेरे टोलपुट बच्चे हैं। तो क्या होता था, कभी कभी पार्टी आती थी ना, तो आंगन में बाबा खड़े हैं, दादी खड़ी हैं, तो मिलते थे, फिर तैयार होके कहते थे दादी से मिलने जाना है, हम उनको बोलते अरे अभी तो मिले दादी से, कहते टोली कहाँ खाई है, टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सेंटर पर तो रोज टोली नहीं मिलती है ना, वहां तो तब मिलती है जिस दिन कोई प्रोग्राम होगा, बड़ी दीदी आएगी, कोई खास होगा, तब अच्छी तरह से भर भर के मिलेगा आपको, है यहाँ तो रोज क्लास के बाद सबको टोली मिलती है। और आज आपका प्यारे बाबा की तरफ से मुख मीठा कराएंगे। अच्छा, सबकी तबीयत ठीक है? सब खुश हैं? सब अपने कमरे में ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक ठाक? अच्छा है।